नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य विधेयक को वापस लेने की मांग करने लगे। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सदस्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि केरलम में कांग्रेस और कम्युनिस्ट दल विदेशी अंशदान एफसीआरए पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एफसीआरए में मूल प्रमुख संशोधन 2010 में कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था और तब से इसमें कई संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान संशोधन का उद्देश्य विदेशी अंशदानों का बेहतर विनियमन और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आज से आयकर अधिनियम 2025 लागू हो गया है। एक रिपोर्ट।
नए वित्त वर्ष के पहले दिन आज आयकर अधिनियम 2025 ने 6 दशक से भी अधिक पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान ले लिया है। इसे पुराने प्रावधानों को हटाकर जटिल नियमों को सुव्यवस्थित करके और करदाताओं के लिए अनुपालन को अधिक सरल बनाकर आसान बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार देश में सभी डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के मानदंडों को पूरा करना आज से अनिवार्य हो गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास का संशोधित शुल्क भी आज से लागू हो गया है। अनुपम मिश्र के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अब तक की सबसे बड़ी जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जा रही है। पहले चरण में मकान सूचीकरण और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। इसके लिए 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि निर्धारित किया गया। पहली बार जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी, जिसमें स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। ये स्वगणना आज से इस महीने की 15 तारीख तक चलेगी। मकान सूचीकरण और आवास जनगणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगी। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि ये जनगणना पिछली जनगणना से अलग है। उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों की इस जनगणना में भागीदारी करने के तरीकों को भी स्पष्ट किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान सदन में 58 भित्ति चित्र कलात्मक कार्य से कहीं अधिक हैं। ये भित्ति चित्र भारत की सभ्यतागत यात्रा की दृश्यात्मक प्रस्तुति हैं। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में राज्यसभा की सांसद सुधामूर्ति द्वारा रचित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम के विमोचन के दौरान बोल रहे थे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत की समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। वे कल रात लगभग 9 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने आज सुबह डिब्रूगढ़ के एक चाय बागान का दौरा किया। वहां उन्होंने महिला श्रमिकों से बातचीत की। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों ने महानगरों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 195.50 रूपये की वृद्धि की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा कीमत अब 2078.50 रूपये, कोलकाता में 2208 रूपये, मुंबई में 2031 रूपये और चेन्नई में 2246.50 रूपये हो गई है। 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की संशोधित कीमत आज से लागू हो गई है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने घरेलू एयरलाइंस के लिए विमानन टर्बाइन ईंधन एचईएफ की कीमत में 15 रूपये प्रति लीटर की आंशिक और चरणबद्ध वृद्धि लागू करने के निर्णय की सराहना की है। श्री नायडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कदम व्यावहारिक और दूरदर्शी है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। कल चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।